खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी अनुराग है कभी वैराग है, कभी अनुराग है कभी वैराग है, जहां बसते हैं माली वही बाग है, जहां बसते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी टेढ़ी है चाल और ये पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा।
ओम शांति। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे न दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहां खुशियां है कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम, मेरी महफिल में शम्मा जले न जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहां बदले है माली वही बाग है, मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम अमुखरित है, प्रेम कुछ बोलता नहीं, परंतु फिर भी प्रेम को यदि कुछ चाहिए तो इस संसार की कोई वस्तु कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, उसे बस उस प्रियतम से सब कुछ चाहिए। इस संसार का सहारा मिले ना मिले चलेगा, परंतु तेरा सहारा चाहिए। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले, परंतु दिल में तेरा उजाला चाहिए। पैर मेरे थक गए हैं बस तेरा इशारा अंदर चाहिए। आसमान में चांद तारे न दिखे परंतु तेरा उजाला अंदर चाहिए। तो प्रेम कुछ नहीं मांगता, प्रेम कुछ नहीं बोलता, प्रेम की भाषा देने की भाषा है। प्रेम उस बादल की तरह है जो ये नहीं देखता कि नीचे चट्टान है कि उपवन है कि रेगिस्तान है या समंदर है। बादल को क्या करना है? बादल भरा है, बादल को केवल देना है। विदेश में, अमेरिका में एक लेखिका थी, इमिली डिकिंसन। अपने जीवन काल में अज्ञात ही रही। उसने लगभग 1800 कविता लिखी पर उसके जीवन काल में केवल 10 कविताएं प्रकाशित हुई। अविवाहित रही, एकांत में ही रही, आइसोलेशन में। कभी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उसने एक बार एक कविता लिखी थी जिसमें लिखा, When much in the woods as a little girl, I was told that snakes would bite me, that I might pick up a poisonous flower or mushroom, or the goblins would kidnap me, but I went along and met none but angels. उसने लिखा कि जंगल में मैं खो गई थी जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी और किसी ने कहा वहां नहीं जाओ आगे, वहां पर सांप है, आगे मत जाना, वहां पर जहरीले फूल है, आगे मत जाना, वहां पर भूत प्रेत है। पर वो कहती है मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं चलती गई, मैं आगे बढ़ती गई, एंड मेट नन बट एंजल्स, पर मुझे केवल फरिश्ते ही मिले और कोई नहीं मिला। हमको याद है 2003 में जब हम मधुबन में आ रहे थे सेवा करने के लिए, तो जब नीचे पहुंचे शांतिवन में और वहां पर कुछ लोगों को बताया कि हम जा रहे हैं ऊपर, तो सबने कहा वहां मत जाना, टिकते नहीं है लोग, तुम वहीं रहो मुंबई में, वहां मत जाना। और जब हम कार से ऊपर आ रहे थे तो कार का जो रथवान ड्राइवर था उसने फिल्म का एक गीत बजा दिया और वो गीत सुनते सुनते हम ऊपर आए। और वो गीत था, शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ, पर वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। शमा परवाने से कहने कहता है कि यहां नहीं आओ, दूर चला जा, परंतु वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। वो किसी का नहीं सुनता क्योंकि उसे जलने से प्यार है, उसे अग्निकुंड से प्यार है, उसे तपस्या से प्यार है। तो आज की जो मुरली है वो तपस्या पर है। तपस्या हमारे जीवन का श्रृंगार है, तपस्या योगी का श्रृंगार है। अगर तपस्या नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी ज्ञान हो और कितना भी चिंतन हो और कितना भी मनन हो, कितनी भी सेवाएं हो, परंतु तप नहीं है, अग्नि नहीं है, ज्वाला नहीं है, तो सब कुछ जैसे कि व्यर्थ है। तीन मित्र एक बहुत बड़े शहर में आते हैं और वहां एक 75 मंजिला होटल में रुकते हैं और उनको कमरा मिलता है 75th सबसे ऊपर वाला। कुछ दिन रुकते हैं और एक रात वो जब अपने काम से लौटते हैं तो देरी हो जाती है, मध्य रात्रि। लिफ्ट ऑन करते हैं, लिफ्ट चालू नहीं है, बंद है। तो वो पैदल चलना चालू करते हैं तीन मित्र। आधी रात का समय है तो क्या करें, पहले से ही थके हैं। तो पहला मित्र कहता है, मैं अच्छी अच्छी दर्शन की फिलॉसफी की बातें सुनाऊंगा, हमारा समय कट जाएगा। तो 25 मंजिल तक चलते चलते वो फिलॉसफी की बातें सुनाता है, अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, धर्म ग्रंथों की बातें सुनाता है, किसने क्या क्या कहा, किस किस दार्शनिक ने क्या क्या सुनाया, वो सब सुनाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा मित्र कहता है, मैं अपनी बातें सुनाऊंगा। तो वो ये सब सुनाता है कि उसने जीवन में क्या क्या किया, कितने कितनी प्राप्तियां की, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी कितनी मुश्किलों का सामना किया। और वो सुनाते सुनाते 50वीं मंजिल आ जाती है। तीसरा कहता है, तुम लोगों ने बहुत बोर किया, अब मैं कुछ अच्छी बातें सुनाऊंगा, एंटरटेनमेंट की बातें। तो चुटकुले सुनाता है, जोक सुनाता है, किस्से सुनाता है, कहानियां लतीफे सुनाता है। और सुनाते सुनाते वो लोग पहुंच जाते अपने कमरे के पास। और जैसे ही कमरे के पास पहुंचते हैं, पता चलता है चाबी रिसेप्शन पे छोड़ आए है। ये कहानी ब्राह्मणों की कहानी है। ब्राह्मण जीवन में पहले 25 वर्ष तो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ज्ञान के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब कुछ किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेवाएं, ज्ञान सुनाना, सेंटर खोलना, कुमारों को निर्माण करना, कुमारियों को तैयार करना, प्रोग्राम्स, मेगा प्रोग्राम्स, सब कुछ। और कुछ समय जाता है भोजन, और कुछ समय जाता है एंटरटेनमेंट, रूहानी एंटरटेनमेंट। और वो करते करते जब कमरे पर पहुंचते हैं तो पता चलता है चाबी कहाँ है, नीचे छोड़ दी। और वो चाबी थी तपस्या, वो चाबी थी खुद को तपाना। तो आज की जो मुरली है तपस्या पर, केवल तपस्वी नहीं, क्या बनना है, महातपस्वी। और आज से, कल से नवरात्रि शुरू हुई है, तो इस मुरली में महातपस्वी आत्माओं की निशानियां सुनाई है बाबा ने, महातपस्वी आत्माओं की निशानी। ये मुरली है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये मुरली है वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO का वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, 7 अप्रैल 1986 की मुरली है, पुरानी मुरली है। और उस समय का WHO का जो थीम था वो था हेल्दी लिविंग, एवरीवन अ विनर, हर एक क्या है, विनर है, हेल्दी लिविंग। WHO का हर साल एक थीम होता है। 1986 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे था, जिस दिन जिस शाम ये मुरली चली, उस साल का थीम था, उस साल से थीम था एवरीवन इज विनर, हर एक विजेता है। तो इस मुरली में बाबा ने तपस्वी आत्माओं की निशानी सुनाई है। पहले आप बताएंगे क्या क्या सुनाई, क्या क्या निशानी है, विधाता और लगन में मगन, और स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए मनन बहुत कर लिया, ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया, माया जीत भी बहुत बन गए, विजय भी बहुत बन गए, परंतु क्या फायदा। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, कि ये खुद के लिए सब कुछ कर लिया, बहुत मनन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत शक्तिशाली बन गए, विजयी भी बन गए, पर दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया, तो क्या कहेंगे? बांटने वाले, देने वाले और विधाता। विधातापन के संस्कार को जब इमर्ज करोगे तो जो बाकी वैरायटी संस्कार है उसको हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप मर्ज हो जाएंगे। कितनी सूक्ष्म बात है और कितनी शक्तिशाली पॉइंट है। दूसरे संस्कारों के साथ कुछ करना ही नहीं है, दूसरे संस्कार बार बार बाहर आते हैं, उसके साथ कुछ नहीं करना है। किसी एक संस्कार को इतना ऊंचा कर दो कि बाकी सब संस्कार नीचे दब जाएंगे। अगर हम आंख बंद करें और अपने विचारों को देखें 5 मिनट तक, तो भयभीत हो जाएंगे, कितने भयंकर विचार चलते हैं, क्या क्या विचार चलते हैं, कहां कहां से विचार चलते हैं, किस किस कोने से, किस किस जीवन के क्षणों से वो विचार, वो जो कर्म किए थे, कर्म तो छूट गए परंतु कुछ बचा है, उसके विचार कहां कहां से अपने आप आ जाते हैं। यदि हम देखें अपने आप को तो हम इस पल में नहीं जी रहे, दिस मोमेंट में हमारा जीवन नहीं है, या तो अतीत में है या भविष्य में है, इस पल अभी। एक जिम्नास्ट होता है, जिम्नास्ट अर्थात शरीर को लचीला एकदम, किसी भी तरह से जो मोड़ सकता है, उसे एक बार एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जो बहुत मिस्टीरियस, अजीबोगरीब होता है, बूढ़ा सा व्यक्ति, पर उसे लगने लगता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति मुझसे मेरे बारे में ज्यादा जानता है। वो करता कुछ नहीं, चुप रहता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे एक ही शिक्षा देता है कि तुम इस पल में जियो, दिस मोमेंट। तुम ये नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने जिम्नेशियम में। तो वो अपने आप को देखता है, आंखें बंद करता है और इतनी बातें उसके मन में चल रही होती है, वो सोचता है ये सब व्यर्थ है जो मेरे मन में चल रहा है, ये सब एक तरफ कर दो। और वो जिम्नेशियम में जाता है, उसके बहुत सारे साथी होते हैं और वो उस दिन ऐसा परफॉर्म करता है जो आज तक उसने किया नहीं था, ट्रिपल फ्लिक, 3 बार गोल 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 घूमना, जो किसी ने नहीं किया था वो करके दिखाता है और आके सुनाता है अपने गुरु को कि आज मैंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था आज तक, मैंने सबको हरा दिया और ये आपकी वजह से, दिस मोमेंट। गुरु कहता है पर तुम तो हार गए, ये जो तुम कह रहे हैं कि मैंने उनको हरा दिया, ये तो अतीत हो गया, तुम इस मोमेंट पे जी ही नहीं रहे हो। तुम ये जो कहते हो कि मैंने ये किया, आपको वहां रहना चाहिए था मुझे देखने के लिए कि मैंने जो आज किया वो देखने के लिए आपको रहना चाहिए था। वो कहता है कि तुम ये जो सोच रहे हो कि आपको रहना चाहिए था, यही तुम्हारी हार है। वो फिर से स्तब्ध हो जाता है, दिस मोमेंट। तो हमारा आधे से ज्यादा समय अतीत में गुजर रहा है, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया था, वो किया था। ये जो पल है, दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। इस पल में सब कुछ छिपा है। खाना खा रहे तो बस खाना ही खा रहे, सो रहे तो बस सो ही रहे, मुरली में है तो केवल मुरली सुन रहे और कुछ भी और नहीं, चल रहे तो केवल चल रहे, योग में है तो केवल योग में है। वो अवस्था तब आएगी जो बाकी छोटे छोटे जो कार्य है वो करते समय बस वही कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, क्लास में बैठे और क्लास सुन रहे तो उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, बस सुन रहे, जो सुनाई दे रहा है और जो सुना जा रहा है और जो सुन रहा है वो एक हो जाए। सूर्योदय को देख रहे तो केवल सूर्य को ही देख रहे और कुछ नहीं, इससे एकाग्रता बढ़ेगी। और फिर जब योग करने बैठेंगे तो केवल योग, और कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा। और वो योग जो होगा उसमें केवल और केवल बिंदु रूप का ही योग, और कोई योग ही नहीं, ना इसको सकाश ना उसको सकाश, ना इधर फरिश्ता ना उधर फरिश्ता, केवल बिंदु और बिंदु, बस इसी में ही 1 घंटा रहने का अभ्यास। कई बार तीन तीन घंटा इसी एक स्थिति में ही रहने का अभ्यास, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं कि मैं बिंदु हूं और वो बिंदु। और इस अभ्यास के लिए एक नया प्रयोग आज हम देखेंगे, पर उससे पहले हम मुरली चालू करते हैं। नवरात्रि के नौ दिवस है, आज की मुरली में नौ निशानियां सुनाई है तपस्वी आत्माओं की, महातपस्वी आत्माओं की। तो मुरली है 7th अप्रैल 1986 महातपस्वी आत्माओं की निशानियां। सबसे पहली निशानी रूहानी परवाने, जो तपस्वी होंगे वो क्या होंगे, रूहानी परवाने होंगे। मेरी तरह जल जाएगा, यहां नहीं आ, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, वो नहीं सुनता है, उसे प्रीत है मिटने से, खत्म हो जाने से, फना होने जाने से, यही प्रेम है। प्रेम डरता नहीं है, प्रेम को चिंता नहीं है मेरा क्या होगा बुढ़ापे में, कौन मुझे देखेगा, क्या मेरा होगा, कोई मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, प्रेम को यह चिंता ही नहीं है। प्रेम मिट जाना जानता है, खत्म हो जाना जानता है। बाबा ने कहा जहां प्रेम है, जहां लगन है, वहां पर कोई विघ्न नहीं। जहां प्रेम है वहां असंभव संभव है। तुम सब कौन हो, रूहानी परवाने हो। रूहानी परवाने कहां आए हैं, रूहानी क्षमा से मिलने आए हैं। ये जो महफिल है वो कैसी है, रूहानी महफिल है। दुनिया वालों को इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये मालामाल करने वाली, ये प्राप्ति स्वरूप बनाने वाली है, भरपूर करने वाली महफिल है। यहां सब कुछ चुपचाप हो रहा है, अदृश्य ये महफिल है, गुप्त है, ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहां। रूहानी क्षमा, रूहानी परवाने, और आज बाबा मिलन का वो दिन है। बैठ जाना और सोचना वो कौन आया है, और चुपचाप आत्मा भरती जाए भरती जाए भरती जाए प्रभु प्रेम से। बाबा ने कहा कैसे आए हो, कौन सा आकर्षण तुम्हें यहां लाया है, और जहां प्रेम है वहां सब कुछ सहज है। प्रेम में कोई बोझ नहीं है। मां को कोई बोझ नहीं लगता है उसका बेटा यदि बीमार है, रात रात भर जागती है। अपना कोई बीमार है, रिश्तेदारों को कितनी मुश्किल होती है, सोने का कोई ठिकाना नहीं, जागने का, उठने का, खाने का, पीने का, कोई उनके लिए खास एकोमोडेशन नहीं होता है हॉस्पिटल्स में। परंतु प्रेम है इसलिए सब कुछ सहन करते हैं। जहां प्यार है वहां सब कुछ सहज है। और जैसे ही पता चल जाए ये मेरा नहीं है, और ड्यूटी दी जाए इसकी सेवा करो, वो मुश्किल है, हम क्यों करें इसकी सेवा, पर पता चले कि ये तो अपना ही है। कुछ दिन पहले मुरली थी, बाप तुम्हें रुचि से पढ़ाते हैं, तुम्हें भी रुचि से पढ़ना चाहिए। बाप तुम्हें रुचि से पढ़ाते हैं, बाप एक ही बार पढ़ाते हैं, जैसे वो लौकिक पिता यदि किसी का टीचर हो। तो एक वाक्य था उस मुरली में, क्या, अपना समझ कर पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी तुम्हें अपना समझ कर पढ़ाते हैं। तो हमारा प्रेम जो हो वो विस्तार को पाए, सभी हमारे इस ब्राह्मण परिवार में ही नहीं विश्व में भी ऐसे ऐसे संस्कार है सबके, खतरनाक से खतरनाक। इतने संस्कार कड़े हैं, संघर्ष उत्पन्न करने वाले हैं कि इनके साथ रहना कभी कभी लगता है बहुत मुश्किल है। परंतु ये ऊपर की परत है, यदि अंदर एक अभ्यास किया जाए कि ये सब मेरे हैं। भगवान के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कितना मुश्किल होता होगा, हमारे एक छोटे से डिपार्टमेंट में इतना मुश्किल है, उसके लिए आसान क्यों है? क्योंकि वो जितना प्यार करता है उतना ही डिटैच है, परंतु हम प्यार करते करते डिटैचमेंट भूल गए, इसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसकी सहज विधि है कि सारे कर्म करते हुए इतना संघर्षमयी सारे कर्म, परंतु उस बीच यदि ज्ञान को अंदर से पकड़ के रखे और ज्ञान के चिंतन में हर दिन 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे लगा दिया जाए, तो ये 4 से 6 घंटे ज्ञान के चिंतन के जो है वो हमें उस कर्म से, उन बातों से डिटैच रखेंगे। नहीं तो वही बुद्धि में घूमते रहेगा। आशीष भाई इसका ये करना है, उसका वो करना है, इसका ऐसा करना है, उसका वैसा करना है, इसको इधर भेजू कि उसको उधर भेजू, ये मानता नहीं, वो मानता नहीं, किसका क्या क्या करूं, अभी इसका ये भी करना है, उसका वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, पर जो करना है वही रह गया, चाबी तो रिसेप्शन पर ही रह गई। विवेकानंद ने कभी कहा है, एट वन मोमेंट वॉकिंग इन द फील्ड, एट अनदर मोमेंट बाउइंग डाउन इन द टेम्पल, एट अनदर मोमेंट गोइंग इन द जंगल एंड गेटिंग लॉस्ट इन समाधि, दैट इज कर्म योग। अभी अभी खेत में जाके काम कर रहे, अभी अभी खेल कूद कर रहे, अभी अभी मंदिर में जाके नमन कर रहे, और अभी अभी जंगल में जाकर एकांत, किसी से कोई मतलब नहीं है, संसार से पूर्ण डिटैच, मौन समाधि। कितना फास्ट हम डिटैच हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर्म प्रेम से नहीं कर रहे, रुचि से नहीं कर रहे, सेवा भाव से नहीं कर रहे, समर्पण भाव से नहीं कर रहे, सबके लिए सब कुछ कर रहे, जी जान लगा दे रहे, छोक दे रहे, अपने आप को झोंक दे रहे उसमें, परंतु जैसे बाहर निकलते हैं दुनिया मरी पड़ी है, किसी से कोई मतलब नहीं, इतना डिटैच्ड, ये कर्मयोग है। कोई संकल्प नहीं, इसने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, किसी से कोई मतलब ही नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, इतना डिटैचमेंट की पावर अपने अंदर होनी चाहिए, तो ही हम ये इतने वैरायटी संस्कारों के बीच स्थिर रह सकते हैं। नहीं तो 4 लोगों ने आज जो कहा योग में वही चला है, और अब मुझे क्या करना है, हम किसी से कुछ मांगने गए और उसने दिया नहीं, और फिर योग में बैठे, तो हमारी प्लानिंग क्या चालू है, अब कब तो आएगा वो, हमारे पास भी तो आएगा मांगने। सबसे पहली निशानी, फर्स्ट रूहानी परवाने, रूहानी परवाने अर्थात प्रेम, रूहानी परवाने अर्थात मिट जाना, फना हो जाना, रूहाने परवाने अर्थात आकर्षण, रूहानी परवाने अर्थात उनको संसार का कोई आकर्षण नहीं, किसी बात का आकर्षण नहीं है, कुछ नहीं चाहिए यहां का, नथिंग मीन्स नथिंग, मुझे केवल तू चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, हक मांग, ये मांगना नहीं है, ये अधिकार है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए बस, तू इशारा दे, तू सहारा दे, तेरा उजाला अंदर हो, तेरा प्रकाश अंदर हो बस, ये पहली निशानी है। तपस्वी बनना अर्थात प्रभु प्रेम उत्पन्न करना अंदर, हम सूखे सन्यासी नहीं है, वो केवल तपस्या करते हैं, प्रभु प्रेम नहीं है वहां, और वास्तव में प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या है, एक ऐसी अवस्था को पहुंच जाना कि वहां पर सबसे प्रेम कर सके, और दूसरों को प्रेम करना तपस्या का परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है वो, और ये बहुत ऊंची स्थिति है। दूसरी निशानी ज्वाला स्वरूप, तपस्वी आत्माओं की दूसरी निशानी ज्वाला स्वरूप। बाबा ने कहा संसार की आत्माओं को 5 प्रकार की बेचैनी है, कौन कौन सी, संसार की आत्माओं में 5 प्रकार की बेचैनी है, या 5 कारण है बेचैनी की। सबसे पहला प्रकृति, प्रकृति बेचैन कर रही है, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंड, तो कभी बारिश, हलचल है प्रकृति में, अभी अभी पिछले रविवार वरदान था, 4 पेपर आएंगे, माया के 5, प्रकृति के 5, तमोगुणी आत्माएं और संस्कार, पुराने संस्कार, ये 4 पेपर आएंगे। अभ्यास करना कौन सा करना है, साकारी आकारी निराकारी का, तो प्रकृति जीत रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकते। और वर्तमान अगर देखा जाए कितनी अनसर्टेनिटीज है, पता नहीं आज क्या होने वाला है, दिन भर कुछ भी नहीं पता, आज दोपहर को क्या होने वाला है, अचानक कोई खबर ऐसी आ जाएगी और हम एकदम शॉक, अच्छा ऐसा हो गया, अभी तक तो ठीक था। ऐसी ऐसी न्यूज आएगी कि हिला देगी, ऐसा समय ये चल रहा है। ज्वाला स्वरूप अर्थात अचल डोल, ज्वाला स्वरूप में सबसे पहली संसार की जो बेचैनी है संसार की आत्माओं की, वो है प्रकृति की, दूसरी वायुमंडल, वातावरण ही ऐसा है, तमोगुनी वायुमंडल है, इतने विकार भरा है यहां पर। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, बायोस्कोप क्या है, बीमारी है, डिसीज है, डिसीज रुग्णता है, वो बीमारी है, बीमारी, और उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है, बीमारी है वो, चिपके हुए है लोग उससे, एंटरटेनमेंट समझते हैं उसको, अच्छा समझते हैं उसको, सीखते हैं उससे, ऐसा समझते हैं, पर वो बीमारी है, डिसीज है, रुग्ण चेतना हो गई है, ऐसा वायुमंडल है। और इससे हम भी अछूते नहीं है, हम भी उसी वातावरण में रहते, पांडव और कौरव दोनों एक ही थाली से खाते थे, भूलना नहीं है, वो पांडव भी यही है, कौरव भी यही है, थे तो खाते तो एक ही थाली से थे, एक ही साथ पले पड़े थे, तो यही सब कुछ है, हम भी उसी वायुमंडल में, संसार भी उसी वायुमंडल, हमको भगवान मिल गया, मधुबन में आ गए, मुरली सुन रहे, परंतु वो यदि अंदर नहीं जा रहा इनमें से कुछ भी, तो हमारी और उनकी स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं। जितना हमको समझ आ गई है, पर एक व्यक्ति है जिसको समझ में आ गया मुझे टीबी है, पर वो समझ उसको टीबी से मुक्त थोड़ी करेगा, ये समझ उसको मुक्त नहीं करेगी। दूसरे एक दूसरा व्यक्ति है जिसको ये पता ही नहीं कि उसको बीमारी है, और एक को पता चल गया, पर प्रभाव तो दोनों में सेम रहेगा। एक को काम विकार का पता ही नहीं और उसमें डूबा हुआ है कि ये विकार है, दूसरे को ये पता चल गया ये विकार है फिर भी डूबा हुआ है, अवस्था दोनों की सेम है, केवल पता चल जाना इससे मुक्ति नहीं है। तो दूसरा वायुमंडल, तीसरा मनुष्य आत्मा है, दूसरी आत्माओं से सबसे ज्यादा माया है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ पक्षपात क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चालू रहता है, इसको सब कुछ दिया मुझे नहीं दिया, उसको वहां मुझे यहां क्यों, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो वही हो रहा है जो होना चाहिए। इसी मुरली में बाबा ने कहा, वाह ड्रामा वाह, वाह स्वीट ड्रामा वाह, क्या मेरे साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, नहीं हो सकता, क्या ड्रामा ही गलत है, ना। चौथा मन, चौथा मन की कमजोरी, अर्थात कोई पुराना संस्कार, हमें सबसे ज्यादा हमारा जो लड़ाई है किसी व्यक्ति से नहीं है, बाहरी किसी चीज से नहीं है, अपने साथ है, मेरी अपने आप से लड़ाई है, मुझे अपने आप को ही जीतना है, दूसरे किसी से, दूसरों से आने वाला डिस्टर्बेंस इतना है ही नहीं जो मेरे अपने आप से आ रहा है। अंदर का एक ऐसा संस्कार है जो बार बार फन उठाकर बैठता है। और पांचवा तन, शरीर, शरीर की बीमारी, और शरीर की जब बीमारी आती है ज्ञान योग धरा के धरा रह जाता है। यदि कोई ये कहे कि ये पहचानो कौन योगी और कौन नहीं, उसकी एक ही क्या कहे कसौटी है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब कैसी अवस्था रहती है। हमने अपने जीवन में असंख्य योगियों को बीमार पड़ते देखा है और फिर उनकी अवस्थाएं देखी है। अच्छे अच्छे योगी, महातपस्वी योगी भी हिल जाते हैं बीमारी के समय, और कोई कोई ऐसे अचल अडोल, इतने अचल अडोल बीमारी में फुल पॉजिटिव, उस बीमारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं। और कोई कोई पता नहीं कितने लेक्चर्स दिए होंगे पर बीमारी आते ही इतनी हलचल, इतनी बेचैनी, इतना चिड़चिड़ापन, हर चीज से असंतुष्टता। कहां गया ज्ञान, कहां गया योग, कहां गई तपस्या अब तक की हुई, सब खो जाता है एक पल में। अब तक हमने जो यात्रा की है वो आत्मा से मन शरीर की तरफ की यात्रा की है। एक दूसरी यात्रा भी है, शरीर से मन की तरफ की यात्रा, वो किसी और क्लास में देखेंगे। तो संसार में क्या है, बेचैनी है। ऐसी बेचैन आत्माओं को कुछ समय, एक पल भी अगर रूहानी चैन दोगे तो वो क्या कहेगी, शुक्रिया करेगी। इसके लिए दूसरा हमारा काम क्या है, ज्वाला स्वरूप, संगठित रूप का ज्वाला स्वरूप। इससे संसार की आत्माओं को दुख और अशांति से मुक्त करना है। हम अपने ही दुख अशांति में अगर डूबे हुए हैं तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे, खुद ही मन में व्यर्थ का संकल्प चल रहे। आज का वरदान है संडे की मुरली का, क्या है, एक व्यर्थ भी चला तो तुम ये भूल रहे हो कि तुम स्टेज पर हो। तुम में व्यर्थ तो संसार में व्यर्थ, और व्यर्थ से मुक्त होने की सबसे श्रेष्ठ विधि है चिंतन मुरली का, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली। यदि व्यर्थ चल रहा है तो मुरली कितनी बार पढ़ो, 2 से 4 बार मुरली पढ़ो, मनन करते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, मनन करते जाओ। एक मुरली लो और उसको पढ़ो और फिर याद करने की कोशिश करो, भूल गए फिर पढ़ो, फिर याद करो, फिर भूल गए फिर पढ़ो, इसी में टाइम जाएगा। और यही बहुत अच्छा टाइम का सदुपयोग है। अपने आप व्यर्थ को कुछ कर ही नहीं रहे, जो संकल्प चल रहे दूसरी आत्माओं के बारे में, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, ये ऐसा करता है, वो वैसा, इसको हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, उसको रहने दो वैसे के वैसे, और सोचो कि मुरली का मुझे इसको मास्टर करना है, इसको पूरा के पूरा याद कर लेना है, जैसे कि वैसी शब्द सहित शब्दशः याद करने का अभ्यास करो। ये इसलिए नहीं कि हम किसी के सामने रट्टा मार के सुनाए और उसको अपना इंप्रेशन जमाए, देखो मुझे सारी याद है, इसलिए नहीं, खुद को व्यर्थ से मुक्त करने के लिए। क्योंकि इस डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी इंपॉर्टेंट है। कहां पहुंच रहे वो मंजिल महत्वपूर्ण नहीं, यात्रा कैसी है वो महत्वपूर्ण है। वही जिमनास्ट की बात बता रहे वापस, वो गुरु उसको कहता चल मुझे तुझे घुमाने ले चलता, अच्छे वाले शूज पहन के आना कल, रनिंग वाले, और उसको बहुत ऊपर ले जाता है, बहुत पहाड़ी पर 3 घंटा चला चला कर ले जाता है, और उसको कहता है यहां क्या है, तो वहां एक छोटा सा पत्थर होता है, वो कहता है ये तो, ये लेने मुझे यहां लेके आए आप पत्थर दिखाने के लिए। वो बूढ़ा व्यक्ति शांत हो जाता है, वो कहता है पत्थर महत्वपूर्ण नहीं था, वो जो यात्रा की ना 3 घंटा वो महत्वपूर्ण थी। इसलिए बाप समान अगर भगवान अभी आ जाए और वरदान दे दे, बाप समान अभी के अभी बन जाओ, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो यात्रा है बाप समान बनने की लंबी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्वाला स्वरूप अर्थात तपस्वी, महातपस्वी, ज्वाला स्वरूप अर्थात संगठित रूप की तपस्या, ज्वाला स्वरूप अर्थात संसार की आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करना, उन्हें रूहानी चैन देना, एक पल भी अगर दोगे तो वो तुम्हें दुआएं देंगी, शुक्रिया करेंगी तुम्हारा। और इस पुरुषार्थी जीवन में जो सबसे तेज गति से हमें चलाता है वो है दुआएं आत्माओं की, सूक्ष्म दुआएं, इतनी सूक्ष्म दुआएं कि दिल से निकलता है उनकी, ना किसी ने देखा ना किसी ने कुछ कहा, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं, पर आत्माओं की सूक्ष्म दुआएं हमें विकारों में गिरने से बचाएगी, उस अनअवेयर मूवमेंट्स में जहां हम अनगार्डेड मूवमेंट्स हैं, हम ज्यादा सावधान नहीं है, बस अब विकार में गिरने ही वाले, दूसरे तो गिर गए हम भी गिरने वाले, उस समय किसी आत्मा की दी हुई दुआ हमें बचाएगी, काम आएगी वहां पर। तो दूसरी निशानी ज्वाला स्वरूप, तीसरी निशानी विधाता। बाबा ने कहा मनन चिंतन खुद के लिए कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। मायाजित खुद के लिए बन गए, विजयी बन गए, बहुत बड़ी बात नहीं है। सेवाएं बहुत कर ली, बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरों के लिए क्या किया? देना, हमें देना है। हमारा जन्म किस लिए है? विधाता बनने के लिए। और जैसे कहा विधातापन के जो संस्कार है उसको इमर्ज करो तो बाकी सारे संस्कार मर्ज हो जाएंगे, दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। संकल्प रखना है कौन सा? देना है। जैसे सूर्य क्या करता है? किरणें देता है। वैसे तुम भी दो, अविनाशी किरणें फैलाओ। खुद शांति कुंड बनेंगे तो शांति फैलाएंगे, खुद तपस्या स्वरूप बनेंगे तो तपस्या फैलाएंगे। मैं महा तपस्वी आत्मा हूं, ब्रह्मचारी आत्मा हूं। खुद ब्रह्मचर्य में स्थित रहेंगे, अखंड ब्रह्मचर्य में, तो कहीं ब्रह्मचर्य की किरणें संसार के सारे कुमार और कुमारियों तक पहुंचा सकेंगे। नहीं तो हर पल कुमारों के लिए मुश्किल है, एक एक पल मुश्किल है। सारे दिन में 100 बार ब्रह्मचर्य खंडन होने का चांस है, कब खंडित हो जाए पता ही नहीं चलता है। कैसे उनकी हम सेवा करें? क्या उनको ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाए, शिक्षा दे, ज्ञान दे? ज्ञान तो उनके पास हमसे भी ज्यादा है, किताबें उन्होंने ब्रह्मचर्य की हमसे भी ज्यादा पढ़ी है। किरणें, शक्तियां, सूर्य हूं मैं, ब्रह्मचर्य का सूर्य हूं। ब्रह्मचर्य की किरणें फैल रही है विश्व भर में। विधाता देना, और प्रेम देता है। जो प्रेम से भरा है उसे जो मिल गया उसकी बस प्रेम फैलता है, स्वार्थ सिकुड़ता है। सेल्फिशनेस, ऑल सेल्फिशनेस इज कॉन्ट्रैक्शन, ऑल लव इज एक्सपांशन, ऑल सिन इज कॉन्ट्रैक्शन। पाप सिकुड़ता है, प्रेम फैलता है। तो विधाता बनना है, तीसरी निशानी। चौथी निशानी चार्ट रखने वाले होंगे वो, कौन सा चार्ट? विश्व कल्याणकारी का चार्ट। इसमें बाबा ने खजानों की लिस्ट गिनाई है, ज्ञान गुण शक्तियां, सहयोग का खजाना दो, खुशी का खजाना दो, शांति का खजाना दो आत्माओं को, हमको देना है। ये चार्ट रखो। अब वो साधारण चार्ट नहीं रखना है कि अमृत वेला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दिया कितना सारे दिन भर में, मतलब हमारी 24 घंटा स्टेज सकाश वाली स्टेज हो, लेने वाली नहीं हो, सकाश वाली, बादल वाली। बादल भर बहुत गया है, अब क्या करना है? उसे बरसना है, जहां जाएगा वहां बरसेगा, बाढ़ आ जाए प्रभु प्रेम की संसार में इतना बरस दो। जहां सूखा पड़ा है सहारा, रेगिस्तान है जहां पर कड़े संस्कारों का, विकारों का, माया का, पाप का, विकर्मों का, व्यर्थ का, निगेटिव का, वहां पर जाकर बरसना है। और शब्दों से कोई नहीं सुनता न सीखता है, बस मन से किरणें फैलाते फैलानी है, देते जाना है मन से। प्रभु प्रेम की किरणें, डिवाइन लव, प्रभु प्रकाश की किरणें, प्रकाश अर्थात ज्ञान, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर्स, डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर्स, इन तीन की सकाश दिन भर देते रहना। तो चौथा विश्व कल्याणकारी का चार्ट, बाबा ने कहा यह चार्ट रखो। पांचवा लेवता के त्यागमूर्त, या फिर हद के इच्छा मात्रम अविद्या। नया शब्द है लेवता के त्यागमूर्त। कुछ भी नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना कोई सल्वेशन चाहिए, ना किसी की प्रशंसा चाहिए, ना किसी की स्तुति चाहिए, ना किसी का सत्कार चाहिए, ना हॉस्पिटैलिटी चाहिए, कोई हमारा हमारी तारीफ करे, एप्रिसिएशन करे, रिकॉग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे, हमारा नाम ले, कहे कि तुमने ये सेवा की, हमने जो कुछ किया ऊपर अपने आप रिकॉर्ड हो गया, चित्रगुप्त ऊपर है, सब रिकॉर्ड कर रहा है हमारा। हमें कुछ किसी को दिखाने के लिए कुछ करना ही नहीं। जितना अज्ञात है उतना ही शक्तिशाली है, जितना गुप्त है उतना ही शक्तिशाली है, और यदि प्रत्यक्ष हो भी जाए तो उससे भी डिटैच्ड, तो लेवतापन के त्यागमूर्त या हद के इच्छा मात्रम अविद्या। अगर कोई दे दे दे, हमारी उसमें जरा भी आसक्ति नहीं है, हमारी आंख कहीं ना डूबे। पिछले संडे की मुरली बाबा ने कहा था, एक है झाटकू, क्या है, उनकी आंख डूबती नहीं है। हमने देखा है किसी बड़े बंगले में कोई लोग जाते हैं, एक भाई है ज्ञान में नहीं चलते, सहयोगी है, थोड़ा सा पता है उनको, ब्राह्मण आत्मा है, उनके घर में आना जाना करती रहती है, घर बहुत आलीशान है और बहुत बड़ा है, तो वो बताते हैं आपके कई कुमार हमारे पास आते रहते हैं, रुकने आते हैं, सेंटर पर जगह नहीं होती है तो बहन जी यहां भेज देती है। तो हमने कुछ कुमार ऐसे देखे हैं, आए कमरे में, आए बहुत अच्छा कमरा, उनको हम सब देते, सब कुछ देते, उनकी सेवा भाव से करते, पर वो साक्षी होकर मैंने एक बात देखी है, बता रहे थे कि कुछ कुछ आत्माएं जो आती है उनकी आंखें डूबती है यहां की चीजों में, ये कहां से लिया, वो कहां से लिया, क्योंकि उनके घर में सब कुछ है। और कुछ कुछ आत्माएं जो आती है इतनी अनासक्त कि आंखें उनसे बात करती है पर वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, ये सोफा, ये फ्लावर पॉट, ये फैन, ये खिड़की, ये शोकेस, कहीं आंख नहीं डूब रही, आ रहे बैठ रहे, आंखें ऐसी स्थिर है कि आंखें इधर उधर जाती ही नहीं, वैराग है आंखों में। ब्राह्मणों के लिए सुना लेते, आंखें नहीं डूबती है। और कोई कोई प्लानिंग भी करते, अगली बार आएंगे नहीं, आपके पास ही रुकेंगे, हम उनको भी भेजेंगे। और कोई कोई ये भी बताते हैं कि आपको उन्होंने बताया था इसलिए हम यहां रुक रहे हैं, सेंटर पे रखने के लिए, रहने के लिए जगह थी पर बहन जी को हमने कहा हम उधर रुकेंगे। क्यों ऐसा, हमारी आंख न डूबे, कहीं ना डूबे। किसी के डिपार्टमेंट में गया, उनके यहां वो कलर अच्छा है, हमारा क्यों नहीं है, उनके यहां वो सोफा अच्छा है, हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है, उनका वो अच्छा है, उनको उनके कमरे में वो ज्यादा चीज है, उनके कमरे में एसी है, हमारे कमरे में क्यों नहीं है। महली मऊ बिछाने कंदील श्याम दाने, अम्हा जमीन माने या झोपड़ी तमाचा, दाता त्या महाल्या मज्जाव शब्द आला, दारा तनाही दोरा या झोपड़ी तमाचा। महाराष्ट्र के एक संत है टुकड़ो जी महाराज, वो लिखते हैं मेरी ये झोपड़ी है ना बहुत बढ़िया है, उस द्वार पर जाओ राजा के तो वो कहते मत जाओ, जाता त्या महाला मत जाओ शब्द आला, दारात नाही दोरे, मेरे झोपड़ी में तो दरवाजा ही नहीं। कंदील शाम दाने अम्हा जमीन माने या झोपड़ी तो माजा, हम जमीन पर सोते हैं, यहां तो दिया भी नहीं है। पाहुनी सौख्य माजे देवेंद्र तो हिलाजे, वो देवेंद्र को भी लज्जा आती है, शांति सदा विराजे या झोपड़ी तो माजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये झोपड़ी में ही मैं खुश हूं। क्यों चाहिए कुछ? और जितने साधन बढ़ते हैं तपस्या कम हो जाती है। हाँ, पर जिस किसी को सब कुछ साधन अपने आप मिले हुए हैं, वो उस साधनों के बीच ऐसा रहे कि जैसे जनक, किसी से कोई मतलब नहीं, आज है चीज कल चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही राजऋषि की निशानी है। सब कुछ है पर सब कुछ चला जाए फिर भी स्थिर, स्टेबल। और जिसको पास है नहीं उसकी पहले ही आग डूबी रहती है, वो तो जो है वो चला गया फिर भी रोता रहता है। इसीलिए लेवता के त्यागमूर्त, छठवीं निशानी, बिंदु सिंधु, बिंदु बनो सिंधु। इसमें तीन बातें, सबसे पहला बिंदु, जो हो गया अब तक जीवन में उसका अभी कोई वर्णन नहीं करते रहना है। मेरे साथ ऐसा किया, मैं उधर गया ये हुआ वो हुआ, सारा जीवन वर्णन ही वर्णन है, इतने शब्द भरे हैं, इतने शब्द भर के रखे हैं, शब्द से खाली करना है अपने आप को। दिस मोमेंट हो गया, वो हिसाब था बस, फुल स्टॉप। कोई कोई लोग अब तक नहीं सुनते, बताते रहते 20 साल पहले वो उसने ऐसी गलती कर दी थी उसके वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया था। एक होम्योपैथी डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली थी और उसने जो दवाई दी थी ना उससे मुझे पैरालिसिस हो गया था 20 साल पहले, अभी एकदम ठीक है। पर ये बात जब भी उनसे हम मिले हैं ये बात हमेशा उन्होंने वर्णन तो की है जरूर कि ऐसा हुआ था और अच्छी योगी तपस्वी आत्मा है, पर ये बात अभी तक बुद्धि से गई नहीं है, फुल स्टॉप लगाया नहीं, पूर्ण विराम बिंदी, दूसरा मैं आत्मा बिंदी, और तीसरा बिंदी अर्थात सिंधु, जैसे वो सिंधु है वैसे खुद अपने आप को भर देना और बांटते जाना। तो बिंदु और सिंधु छठवीं निशानी। सातवीं निशानी पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1 भाग्यवान और बेफिक्र। तो अपना भाग्य निरंतर याद करते रहना है कि मुझे क्या क्या मिला है। ये भाग्य ऐसा है कि खुशी कभी गुम ही नहीं होगी, भाग्य भूलते ही खुशी गुम हो जाएगी। फिर ब्राह्मण जीवन में क्या बचा, केवल संघर्ष, लड़ाइयां, संस्कारों की टकराव, और कुछ भी नहीं है। लास्ट संडे की मुरली, लगाव तो नहीं है, पहला लगाव नहीं है किसी से, प्रभाव भी नहीं है शायद, हमें किसी का लेक्चर विक्चर नहीं सुनना, हम खुद ही अपना लेक्चर है, ये भी नहीं है। पर तीसरी बात है जरूर, वो कौन सी, बुद्धि का टकराव है दूसरी आत्माओं से। और जहां बुद्धि का टकराव है योग खत्म। अभी अभी किसी से झगड़ा करो और जाके योग में बैठो, बीज रूप स्थिति का क्या अनुभव होता है देखो होगा जीरो अनुभव। उस दिन का शाम नुमा शाम योग गया, अमृत वेला गया, शाम शाम तक नुमा शाम तक थोड़ा ठीक हो सकता है। तो भाग्य का चिंतन, खुशी गायब नहीं होगी, और बेफिक्र, किसी की ताकत नहीं, किसी के पास कोई बंदूक नहीं है जो तुम्हारी इस बादशाही को उड़ा दे। क्या भाषा है भगवान की, कोई बंदूक तुम्हारी बादशाही को उड़ा नहीं सकती, बंदूक की कोई गोली नहीं उड़ा सकती। तो तुम बादशाह थे, तुम बादशाह हो और तुम बादशाह बनोगे। सम्राट का नशा, चंद्रगुप्त को नशा है बचपन से, वो अभी तक बना नहीं है, पर बचपन से बस एक ही नशा, उसको एक ही चीज दिखती जाती है, सम्राट सम्राट सम्राट। है कुछ भी नहीं उसके पास अभी, परंतु सम्राट होने का नशा है। वैसे ही हम भी राजा है, सम्राट है। तो ये एक बात, सातवीं पॉइंट। आठवीं निशानी महातपस्वी आत्माओं की छत्र छाया, छत्र छाया के अंदर रहना, निरंतर ये अनुभव करना कि मेरे ऊपर एक छत्र है, मैं जहां भी जा रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, छोटी सी छोटे से छोटा काम कर रहा हूं, पर मेरे ऊपर क्या है, छत्र छाया है। अंधेरा है, अंधेरी रात, और हमको कहा गया जाओ चलो इसमें, साहस का दिया जलाना और चलना। वो क्या लिखती है एमिली डिकिंसन, लोगों ने बहुत डराया उसको कि यहां ये होगा वहां वो होगा तुम मत जाओ, पर वो नहीं रुकी। आई वॉज टोल्ड दैट स्नेक वुड बाइट मी, दैट आई माइट पिक अ पॉइजनस फ्लावर और मशरूम और द गॉबलिन्स वुड किडनैप मी, बट आई वेंट अलॉन्ग, पर मैं जाती रही चलती रही, एंड मेट नन बट एंजल्स। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अज्ञात का भय सबसे बड़ा भय है संसार में, मृत्यु से भी बड़ा भय, क्या होगा पता नहीं, पर चले जाना, निकल पड़ना, कुछ पता नहीं, बस एक ही विश्वास है कि बाबा मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया के अंदर। बाबा ने कहा संकल्प रूपी पाव भी बाहर निकाला तो माया पकड़ लेगी, इसके लिए छत्र छाया है वहां विघ्न नहीं, छत्र छाया वहां मुश्किल भी आसान है, छत्र छाया वहां पहाड़ भी राई है रुई है, छत्र छाया से बाहर माया पकड़ लेगी। तो निरंतर ऐसा अनुभव करना, एक छत्र छाया है, वो नक्की के वहां है ना वो गार्डन में छत्र छाया, वहां बैठ के पहले स्थूल का अनुभव करना कि ये जैसी छत्र छाया है ना, बाहर बारिश मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वैसे माया की बारिश में भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी छत्र छाया लेकर, छत्र छाया मेरे ऊपर है। तो आठवीं निशानी छत्र छाया, और लास्ट नौवीं निशानी विदाई, जिसमें बाबा ने कहा जागरण, तुम्हारे भक्तों ने अच्छी कॉपी की है, तुम कॉपी क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते, वो किसकी कॉपी की है, जागरण की। तो जागृत रहना है, जिस समय मूर्छित हो गए गलती हुई, जिस समय भूल गए ज्ञान को, भूल गए बाप को, भूल गए प्राप्तियों को, भूले गलती हुई, विकर्म हुआ पाप हुआ, आकर्षण हुआ संसार का कोई ना कोई, तो भूलना ही नहीं है, निरंतर जागे रहना, जागते रहना, और क्या करना है, कमाई। और इसमें जागने का समय कौन सा है सभी ब्राह्मणों के लिए? सुबह 2 से 5, यही टाइम है तपस्या करने का। दिन भर में हजारों काम होते हैं, हजारों सेवाएं होती है, हजार प्रकार की चीजें होती है, वायुमंडल अलग होता है। जो कुछ करना है वो 2 और 3:30 के बीच में करना है। 3:30 बजे ब्राह्मण उठ जाते हैं, तपस्वी अर्थात 2 से 3:30 ये तपस्या हो। शिवरात्रि चल रही है, नवरात्रि, शिवरात्रि रोज है नवरात्रि अर्थात 9 दिन की तपस्या। 9 दिन की तपस्या में ये 9 बातें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली पॉइंट रूहानी परवाने मिट जाना, दूसरी पॉइंट ज्वाला स्वरूप महातपस्वी स्वरूप अग्निकुंड बन जाना, जलना, जो जलेगा वही प्रकाश देगा। तीसरा विधाता, विधातापन के संस्कार, जैसे बाप विधाता है मैं भी विधाता, मुझे देना है देना है देना है, लेने के संस्कार। मांगना नहीं है किसी से, बहुत मांग लिया, मुझे प्रेम दो, मुझे वस्तु दो, पैसे दो, ये दो वो दो, ये बहुत बड़ी माया है। किसी सेवा केंद्र का एक भाई कभी यहां आया था, तो एक भाई उसको घुमाने लेके गया और पूरा घुमाने के बाद उसको कन्विंस किया कि मुझे ये वस्तु चाहिए तुम दे दो, इसलिए घुमाने लेके गया था। हमें स्थूल वस्तुएं तो चाहिए ही नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा, हाँ आवश्यकता है तो हम कहें कि ये जरूरत है, और नहीं मिली, मिली तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो छोड़ दो, बहुत ही अच्छा। उस बाबा की, बाबा ने इसी मुरली में कहा ब्राह्मणों के लिए अकल्याण है ही नहीं, जो हो रहा है बुरा है ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है ब्राह्मणों के लिए, अच्छा है जो नहीं मिला। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी होता नहीं तो उसकी संभाल में ही सारा बुद्धि लग जाती, अच्छा हुआ व्हाइट एलिफेंट घर में नहीं आया। व्हाइट एलिफेंट पता है ना, इंग्लिश में कहावत है, सफेद हाथी। वस्तु क्या खरीद ली, फ्रिज क्या ले लिया, दिन रात फ्रिज की ही चिंता है, वो व्हाइट एलिफेंट बन गया, हटाओ उसको तो कहीं जाके शांति से सो सकता है आदमी। उसके बाद में अगली निशानी चार्ट, कौन सा चार्ट रखना है, विश्व कल्याणकारी का चार्ट, उसमें बाबा ने सारे खजाने गिनाए, और अब ये चार्ट रखो दिया कितना। अगला पॉइंट छठवा, पांचवा पॉइंट लेवता के त्यागमूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्र अविद्या, नहीं चाहिए, नहीं मिला बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं चाहिए, सारे चीजों की आदत डाल के रखनी है अपने आप को, कठोर से कठोर परिस्थिति की आदत डाल के रखनी है। बिस्तर पर बहुत सो लिए, जमीन पर सोने की आदत डालो, ये बहुत अच्छी तपस्या है, बहुत ही अच्छी तपस्या। चटाई डालो और सो जाओ उसमें, कुमारों के लिए तो सबसे पावरफुल है, सारा बैक पेन और सारा जो कुछ है ना सब अलाइनमेंट हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज है मेडिकल में, जो ये बिस्तर पर सोने के क्या क्या नुकसान है, ऐसे ऐसे जितना मुलायम होगा उतनी कमर में दर्द ज्यादा, नीचे सो जाओ सीधा, किसी तकिया की आवश्यकता नहीं, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, फ्लैट बस सो जाओ, ये तपस्या है। स्थूल है पर स्थूल का प्रभाव सूक्ष्म पर होगा, इसलिए हमने कहा शरीर से मन की तरफ जाना है, मन से शरीर की तरफ बहुत गए, मैंने काम को जीत लिया है, सारी उम्र चली जाती है, मर जाता है तो भी नहीं जीतता। शरीर से मन की तरफ, शरीर को तपाना है तो मन अपने आप तपेगा। अगला पॉइंट बिंदु, बिंदु और सिंधु, तो बीती को फुल स्टॉप, कोई वर्णन नहीं करना है, कोई अगर सामने आके करे तो कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहना। कोई कहे अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा रखा तुमको, ये किया तुम्हारे साथ, कुछ बोलना ही नहीं, चुप, शांत हो जाएगा। अगला पॉइंट भाग्यवान हूं और बेफिक्र बादशाह हूं, था हूं और रहूंगा। अगला पॉइंट कोई फिकर ही नहीं कितना होगा क्या होगा, अच्छा है ना, दुनिया बदल रही है, तुमको क्या करना है, परिवर्तन ही हो रहा है। अगला पॉइंट मछली होती है उसको कोई चिंता होती है धरती पर क्या हो रहा है, होने दो, वो अपने मस्त सागर में है। सागर को बहुत जान लिया, अब सागर को पियो, सागर को पाना नहीं है, अब सागर को पा लिया है, सागर को पीना बाकी है। आकंठ यहां तक, अगला पॉइंट छत्र छाया कि मैं देखना ऊपर बीच बीच में है कि नहीं है, सही में दिखनी चाहिए। हाँ है, हाँ ठीक है ऊपर ऐसे बीच बीच में, इट्स ओके है, चेकिंग करते रहना बीच बीच में, जैसे ये कोविड पेशेंट बार बार सैचुरेशन चेक करते रहते, सुबह 99 था अभी 92 है, अभी 96, डॉक्टर मेरा 1% से कम क्यों हो गया, कुछ हुआ तो नहीं था मुझे, शांत बैठो, बार बार चेक करते रहते, जिसको थर्मामीटर दिया गया वो एक एक घंटे में टेम्परेचर चेक कर 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 बताते रहते, फिर हमको कहना पड़ा नाउ स्टॉप टेकिंग टेम्परेचर, अब इस टेम्परेचर लेना ही बंद कर दो। एक पेशेंट है वो अपने युगल पत्नी जो है उनका बीपी एक एक घंटे का नाप के लेके आते थे और इतने परेशान रहते थे, 2 से क्यों बढ़ गया 3 से क्यों बढ़ गया, उनको कहा बीपी नापना बंद करो, जब यहां आएंगे ना हम ही नापेंगे बस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विदाई के समय बाबा ने कहा जागरण, जागना है और कमाना है, और निखिलेश भाई कमाने का समय कौन सा है, 2 से 3:30, पर 2 बजे उठने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा ही नहीं कि हट योग करना है, वो लक्ष्य है धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है, पर वो सहज हो जाए नेचुरल हो जाए, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं, वो इतना नेचुरल हो जाए और उठने के बाद में भी झुटके नहीं, नींद नहीं, आंखों का मलना उस दिन वरदान था, वो सब नहीं, कुछ नहीं, जागृत जागती ज्योत, ऐसी अवस्था हमको प्राप्त करनी है। तो ये 9 निशानियां थी महा तपस्वी आत्माओं की। जब मुरली सुनने वापस अभी बैठेंगे तो ऐसे बैठना, ऐसे सुनना कि जैसे वो मैं बनते जा रहा हूं, धारण हो रहा है। जानना नहीं है सागर को, क्या करना है सागर को, अब पीना, कैसे पियोगे, सीधा। ओम शांति।